لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سورہ نحل کی آیت جو بنیادی اعتبار سے 1439 ہجری کے ایام عزا کے تیسرے عشرے عشرہ سجادیہ کی تمام مجالس کا اصل عنوان تھی وہ آیت، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری گفتگو ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئی کہ جہاں پہ اس آیت کی تشریح کی ضرورت ہے. ابھی تک خالی آیت کی تلاوت کی گئی اور ایک آدھ دن اس آیت کا ترجمہ کیا گیا، لیکن جیسا کہ طریقہ کار ہوتا ہے، کل رات کی مجلس سے ربط دیتے ہوئے پہلے ایک آدھ تمہیدی بات اور اس کے بعد پھر اس آیت کے حوالے سے پیغام اس عشرے میں کیا دیا جائے گا. البتہ ایک سوال، چونکہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا، سوال تو بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، اگر میں سوالات ہی کا جواب دینے لگوں تو پورا عشرہ پہلی دو مجلسوں کے بعد سوال و جواب ہی میں وقف ہو جائے گا، آگے کوئی بات نہیں ہو سکے گی. مگر ایک سوال اور میرے لیے تعجب کی بات یہ کہ اس حوالے سے امام بارگاہ علی رضا کے اس ممبر پر میں نے 8-10 دفعہ تو تفصیلی گفتگو کی اور اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا، اور وہ تعجب اس لیے بھی ہے مجھے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب کبھی میں نے گفتگو کی تو ساتھ میں ایک جملہ میں نے کہہ دیا کہ بعض اوقات ایک کا واقعہ دوسرے کے حالات میں لکھ دیا جاتا، تو اگر دونوں قابل احترام شخصیتیں ہیں، واقعہ یہاں سے وہاں چلا گیا، واقعہ صحیح ہے اور شخصیتیں بھی قابل احترام ہیں، تو کوئی قیامت نہیں آگئی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا. گرچہ اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں تو جن واقعات پر اتنا ریسرچ نہیں کی جاتی ہے اس میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے تو ہوتی ہے، جس پہ بہت ریسرچ ہوتی ہے وہاں بھی یہ اکثر ہو جاتا، یعنی معصومین، اور معصومین میں بھی پنجتن. اب پنجتن کے حالات پر، واقعات پر، احادیث پر، فرمان پر، احکامات پر سب سے زیادہ ریسرچ ہوتی، لیکن کتنے واقعات ایسے ہیں کہ امام حسن کے واقعے ہیں امام حسین کے حالات میں آگئے، امام حسین کے واقعات ہیں امام حسن کے حالات میں آگئے، تو کیا قیامت ٹوٹ پڑی؟ کون سا اتنا بڑا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا؟ واقعہ سچا، دونوں شخصیتیں برابر کا درجہ رکھنے والی ہیں. اور اسی طرح سے جو حوضے میں اور مرجعیت کے پاس और इश्तेहाद के दर्स में बहुत बड़ा मसला होता है वो ये कि पांचवें और छठे इमाम की बहुत सी हदीसें वो मिक्सअप हो जाती है, ये पता भी नहीं चल पाता 1400 साल या 1300 साल के इश्तेहाद के बाद भी कि यह हदीस पांचवें की है कि छठे की है। चुनाचे अक्सर यही जुमला लिखा जाता है अन अहदे हिमा, रावी ने यह रिवायत इन दो में से किसी एक से रिवायत की, क्योंकि दोनों मासूमीन मदीने की मस्जिद में मदरसा चला रहे थे और तकरीबन तकरीबन जितने पांचवें के शागिर्द हैं वही सब छठे के शागिर्द हैं, तो पांचवें की हदीस कभी छठे के नाम से, छठे की हदीस पांचवें के नाम से, ये मासूमीन के हालात में बयान कर रहा हूं। मुझे इतनी लंबी चौड़ी तमहीद की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि मैं हैरत ज्यादा हूं इसलिए यह तमहीद इतनी लंबी हो गई। और इसी तरह जो हमारी कौम का सबसे अहम मौजू करबला, करबला के हालात में भी कितने वाकयात ऐसे हैं कि एक खास तौर पे करबला के बाद एक बीवी के हैं वो दूसरी बीवी के नाम से पढ़ दिए गए, फर्क क्या, वाकया हुआ, मुसीबत आई, दोनों काबिल एहतराम शख्सियतें हैं। कितने ही ऐसे वाकयात हैं जो जनाब उम्मे कुलसूम के हैं, शहजादी ज़ैनब के नाम से पढ़े जाते हैं, किसी और बच्ची के हैं जनाब सकीना के नाम से पढ़े जाते हैं। तो खैर बात बहुत ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं, लेकिन बताइए रहा था कि ये वो शख्सियतें हैं जिन पे तो बाकायदा हमारे यहां हर वक्त 1400 साल से रिसर्च जारी, तो उसमें अगर मीसा में तम्मार और रुशैद हजरी का वाकया मिक्सअप हो गए कि जहां रिसर्च की बात तो छोड़िए, रुशैद हजरी का नाम भी 95% मोमिनीन ने नहीं सुना होता, तो अब यह होता है कि जो के नाम नहीं सुना तो बाज औकात जल्दी की वजह से वो वाकया मीसम के नाम से पढ़ दिया गया होगा कि भाई मीसम का नाम तो हर एक को मालूम है, शख्सियतें एक ही स्टेटस की हैं, वाकया एक अंदाज का है, ये ज्यादा मशहूर है, खास तौर पर शायरी में इतना वक्त नहीं होता। अच्छा अब आइए, ये थोड़ी तमीज है तो आप समझ गए होंगे, मुझे इत्तला मिली कि एक भी नहीं, दो भी नहीं, पांच भी नहीं, एक कसीर तादाद में मोमिनी उस दिन से कंफ्यूज बैठे जिस दिन मैंने मीसा में तम्मार के हालात में ये बताया कि जबान मीसा में तम्मार की नहीं कटी, जबान रुशैद हजरी की कटी। तो मैंने ये को थोड़ी कहा कि मीसा में तम्मार पे कोई जुल्म ही नहीं हुआ, अब वो आराम के साथ अपनी जिंदगी गुजार के दुनिया से रुखसत हुए और सारे मजालिम रुशैद पर हुए, ये कुछ थोड़ी कहा कि मजमा चौंक उठा कि आज तक तो हम कुछ और सुनते आए, मीसा में तम्मार पर भी बराबर से उतना ही जुल्म हुआ। लेकिन चूंकि हमारे यहां मीसा में तम्मार की शोहरत रुशैद के मुकाबले में बहुत ज्यादा, खाली ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। अब एक सवाल किया गया कि मौलाना आपने ये कहां से पढ़ दिया, तो मैंने सवाल किया कि आपने कहां से पढ़ दिया कि मीसम की जबान कटी, भाई आप भी तो बताइए ना कि आपने किस किताब में पढ़ा। आप ज्यादा से ज्यादा कहेंगे शायरी में सुना कि जबान कट गई मीसम की, तो शायरी तो दीन नहीं होता है ना, कौन सी तारीख कभी किसी मोमिन ने आराम के साथ इत्मीनान के साथ बैठ के पढ़ी हो कि मीसम के हालात क्या है और रुशैद के हालात क्या है। अच्छा अब मैं एक जुमला कह दूं, जो बहुत सारे खतीब और जाकिर हजरात तो जोश खिताबत में कहते हैं, लेकिन मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, और वो ये कि मैं चैलेंज करता हूं कि दुनिया की कोई भी किताब उठा लीजिए जिसमें मीसा में तम्मार के हालात लिखे हैं, शायरी नहीं, मरसिया नहीं, उसमें तो एक शायराना जबान होती है, लेकिन कोई भी किताब मोतबर या जईफ, और इसमें मुझे बता दीजिए कि कहां यह लिखा हो कि मीसा में तम्मार की जबान कटी। मीसा में तम्मार के हालात उर्दू में भी कई किताबों में, रुशैद हजरी के हालात उर्दू में भी कई किताबों में, शायद मैं बात को ज्यादा फैला गया समेटू, और वो ये कि दोनों मौला के قریبی صحابی، دونوں مولا کے شاگرد، دونوں کو مولا نے ایک جیسا علم عطا کیا تھا، دونوں کی شہادت کا تقریباً تقریباً واقعہ بھی مشترک ہے، بھئی یہ فرق تھا کہ جب عیسیٰ بن تمار کو کھجور کے درخت پہ سولی دی گئی تو ان کے منہ پہ لگام چڑھائی گئی تاکہ وہ مولا کے فضائل بیان نہ کر سکیں اور آنے والے زمانے کے حالات، اور رشید حجری کو جب کھجور کے درخت پہ سولی دی گئی تو ان کی زبان کاٹ لی گئی۔ مقصد اس ظلم کا ایک ہی تھا، مولا کے فضائل مجمع کے کان میں نہ پہنچے۔ جب سولی دی جاتی ہے تو مجمع عام جمع ہوتا ہے یہ منظر دیکھنے کے لیے، اور جو آنے والے حالات یہ دونوں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، یہ حالات بتا رہے ہیں اس سے روکنے کے لیے۔ باقی تقریباً مشترک مظالم ہیں، ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، عیسیٰ بن تمار کے پیٹ میں برچی بھی ماری گئی، اور یہ تو پھر میں نے وضاحت کی کہ ایک کے منہ پہ لگام چڑھائی تاکہ وہ بول نہ سکے، ایک کی زبان کٹی۔ اور پھر آخری میں شروع والا جملہ ریپیٹ کر دوں کہ کسی بھی کتاب، آپ پوچھ رہے کس کتاب سے پڑھا، میں کہتا ہوں کسی بھی کتاب جا کے عیسیٰ بن تمار اور رشید کے حالات پڑھ لیجیے۔ اچھا پھر بھی اگر اصرار رہے گا تو مثلاً 14 ستارے اردو میں ایک کتاب ہے ائمہ کے حالات پر، اس میں بھی لکھا ہوا مولا کے واقعات کے آخر میں مولا کے صحابی۔ علمی دنیا میں یہ حوالہ اتنا معتبر نہیں، شیخ عباس قمی جن کی مفاتیح کے بغیر مومن نہ سال کے باقی اعمال انجام دے سکتا ہے اور نہ ہی شاعر حسینی یا یہ کہ اطبات مقدسہ زیارات کر سکتا، یہی مفاتیح ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتی۔ انہوں نے 14 معصومین کے حالات پہ جو مشہور کتاب لکھی ہے منتہی الاعمال، جس میں ہر امام کے حالات کے بعد، امام کے حالات ہو گئے، اب میں یہ اپنے جو اس وقت کا سوال ہے اس کے جواب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنی قوم میں مطالعے کی عادت بڑھے اس لیے کتاب کا شوق دلا رہا ہوں کہ اس کتاب میں حالات امام کے ہو گئے، اس کے بعد 2 چیپٹر اور ہوتے ہیں، ایک میں پھر اس امام کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اولاد کی اولاد کی اولاد، بہت سارے سادات کرام کے جو شجرے اس کی تفصیل ہوتی ہے، ایک پورا ایک باب چیپٹر ہوتا، اور دوسرا چیپٹر ہوتا ہے اس امام کے اہم ترین صحابی۔ اب اگر ابو حمزہ صومالی کا میں نے نام لیا اور ان کے حالات پڑھنا ہے تو یہی کتاب آپ کے کام آئے گی، اور تمہید مکمل کر کے، تمہید بھی نہیں سوال کا جواب، جس چیز پہ میں آ رہا ہوں وہ بھی آپ کو تفصیل اس کتاب میں ملے گی۔ یعنی یہ حوالہ خالی سوال کے جواب کے لیے نہیں ہوا، ہمارے آج کے موضوع کے آغاز کے لیے بھی ہوا جو بس اب شروع ہونے والا۔ تو عیسیٰ بن تمار، رشید حجری، ان کے حالات منتہی الاعمال کتاب میں مولا کے صحابیوں میں ملیں گے، حبیب ابن مظاہر کے نہیں، وہ ملیں گے امام حسین کے صحابیوں میں۔ بہت اس اعتبار سے بہت اچھی کتاب کہ اس کے اندر 2 ایسے موضوعات پہ بات کی گئی جو عام طور پہ اردو کتابوں میں نہیں ہوتے۔ ایک ائمہ کے اصحاب، بھئی پیغمبر کے صحابی سلمان ہو، مقداد ہو، ابو ذر، تو پھر بھی مجلس میں حالات آتے رہتے ہیں۔ عبان ابن تغلب، 6ٹے امام کہتے ہیں کہ مجھے محبت ہے کہ تم جا کے مسجد میں بیٹھو، لوگوں کے درمیان فتویٰ دو، مرجعیت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ اب یہ عبان ابن تغلب نام بھی نہیں سنا لوگوں۔ ازبق ابن نباتہ، مولا کے انتہائی قریبی صحابی، جب امام حسن سے کہا تھا بیٹا حسن اب تمہارا باپ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا، 21 رمضان مغرب عشاء کے بعد، صرف 5 یا 6 صحابیوں کو آنے کی اجازت دی، ازبق ابن نباتہ ان کے لیڈر تھے، جن کو آخری زیارت کی اجازت ملی، اور ان سے مولا نے وہ ایک حدیث ارشاد فرمائی جو مسئلہ شرعی کو واضح کرنے والی، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 3 گناہگاروں کی بخشش نہیں، یہ 21 رمضان کی حدیث آپ سنتے ہیں یا سنتے ہوں گے۔ تو آخر میں وضاحت بھی کی اس حدیث میں कहा पहला जो अपने बाप का आंख हो, और कहा कि हम और रसूल इस उम्मत के बाप हैं, आके वालिदैन में सबसे पहले हम लोग आते हैं हमारा हक अदा न करने वाला। यह अजबक इब्ने नुबाता, यही वो अजीम साहबी जिनको मौलाना रजत, क्योंकि अभी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद अली नकवी साहब पिछले अशरे में हालात पढ़ चुके हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी से ये बात कह रहा हूं इत्मीनान के साथ, ये हालात तो आपने सुने। मौला ने जमाने के इमाम के आने के बाद अपना जहूर जो बताया कि मैं किस तरह जाहिर हूंगा, अना दाबतुल अर्ज, मैं दाबा अर्ज हूं सफा और मरवा के दरमियान, जमाने का इमाम हजरे अस्वद के पास जाहिर होगा, मैं सफा और मरवा के दरमियान जाहिर हूंगा, अंगूठी लेके आऊंगा, हर एक की पेशानी पे लगाऊंगा, जिसकी पेशानी पे लगाऊंगा मोमिन की पेशानी पे हाजा मोमिन आ जाएगा, काफिर की पेशानी पे हाजा काफिर, मशहूर हदीस पूरा खुतबा शायद पढ़ा भी हो मौलाना ने। यह अजबा किम देनोबाता कौन है, नाम सुन लिया और बस, बल्कि नाम भी नहीं सुना, यह है कौन, इनकी अजमत क्या, इनकी फजीलत क्या कि मौला इन्हें एक तरह से गैब के हालात बता रहे। तो अब ये असहाब इमाम जो मशहूर नहीं है लेकिन रुतबे में मशहूर से कम भी नहीं है, उनके हालात उर्दू में नहीं मिलते, इस किताब में मिलेंगे। और दूसरी चीज जो इस किताब की खसूसियत, औलादों के हालात नहीं, औलाद तो हर सही सैयद के पास उसका शजरा भी महफूज होता है और इस हवाले से मालूमात भी नहीं, वो नहीं, आइम्मा की माओ के हालात, ये वाहिद किताब आपको उर्दू में मिलेगी। फिर इससे वही तर्जमा कर करके बहुत से उलमा ने पूरी किताब लिख डाली, लेकिन बहरहाल पहली किताब आपको ये मिलेगी जिसमें हर इमाम की मां के वो हालात हैं जो आमतौर पे हमारे यहां नहीं पढ़े जाते। अब किस तरह से नजमा खातून से सातवें इमाम की शादी हुई, और वो तस्वीर वाली रिवायत है क्या, ये आपको उर्दू में आमतौर पे नहीं मिलेंगी ये चीजें, ये इसमें तो मुंतहाल आमाल का तारुफ सवाल के जवाब के लिए भी कराया कि मीसम के भी पूरे हालात हैं अत्तमार और रुशैद के भी, और इसके अलावा मासूमीन के हवाले से कुछ ऐसी मालूमाती बातें जो आम तौर पे उर्दू किताब में नहीं आती। तर्जमा इसका हुआ है अहसनुल मकाल के नाम से। बहरहाल बहुत लंबा जवाब दे दिया, लेकिन इसमें कुछ खास तौर पे जो आखिरी जुमला मैंने अभी कहा आइम्मा की माए, ये मेरा मौजू बनने वाला है, और असाबे इमाम में से बास के हालात, ये तो आज की मजलिस का वैसे ही उन्वान था, तो बजाय इसके कि मैं मजलिस में रुक रुक के किताब का तारुफ करा के हवाले देता, शुरू में पूरा तारुफ हो गया। अब आ जाइए असल मौजू, दो आदमी, दो मोमिन इमाम के चाहने वाले इमाम के शिया लड़ रहे हैं। कल मजलिस इसी में खत्म हुई थी ना, उसी रिवायत पे, उससे रब्त दे के बात को आगे बढ़ाना। लेकिन जब हमने असहाबे इमाम में से इतनों के हालात पर दो दो जुमलों में सही बात कर ली, तो जो असल रावी है उस रिवायत का मुफज्जल इब्ने अमर, उनके बारे में भी एक दो जुमले बता दिए जाएं। मुफज्जल इब्ने अमर का इस एतबार से खुसूसी तस्किरा होता था पहले और अब दोबारा होने लगा कि इनको बिठाकर छठे इमाम ने वो ट्रेनिंग दी थी, कि वो वाली ट्रेनिंग नहीं लेकिन उससे जो पैगाम है वो आज काम आने वाला है, वो ये कि चौथे इमाम के जमाने से इस्लामी दुनिया बहुत तेजी से फैलने लगी, बहुत तेजी से। मोहम्मद बिन कासिम सिंध में कब आया, चौथे इमाम के जमाने, जैद शहीद की वालिदा सिंधी खातून उसी जमाने में तो सिंध से आई थी इस्लामी दुनिया में, जो चौथे इमाम की उनसे शादी हुई। और यूरोप में इस्लाम किस जमाने में पहुंचा, जो स्पेन में तारिक बिन जियाद गया, चौथे इमाम के जमाने। रशिया और चाइना में इस्लाम कब पहुंचा, चौथे इमाम के जमाने। अफ्रीका का आखिरी हिस्सा, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, वो बहरे जुल्मात जो इकबाल के शिकवे में आया वहां तक इस्लाम कब पहुंचा? चौथे इमाम के जमाने। तो अब यह खाली इस्लाम नहीं पहुंचता, जहां इस्लाम पहुंचता है वहां के लोग अब मक्के मदीने आते हैं, और जब मक्के मदीने आते हैं तो अपने मसले लेके आते हैं। जो मसले मक्के और मदीने में नहीं है यूरोप में है, जो प्रॉब्लम मक्के मदीने में नहीं है चीन में है, जो चीज कभी सोची भी ना थी मक्के मदीने वाले ने वो रूस में है। हर जगह के अपने कुछ लोकल मसले होते हैं, खाने के हवाले से कि ये चीजें हलाल है कि हराम, तो देखी नहीं अरब वालों ने कभी। लिबास के हवाले से कि ये वाला लिबास पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते। तो ये तो मैंने बहुत जल्दी मिसाल दे दी, सैकड़ों मसले लेके आते हैं। चौथा इमाम, पांचवा इमाम, छठा इमाम। तो अब ये इस्लाम फैल रहा, इस्लाम फैलने के नतीजे में मुसलमानों की तादाद भी बढ़ रही है, मुसलमानों को पेश आने वाले मसले भी बढ़ रहे हैं। चले 11 या 12 दफा जिस किताब का हवाला दिया, एक बार फिर दे दूं, इस आज के मजलिस में दो किताबों के हवाले आ गए, एक पुराने अंदाज की एक नए अंदाज की। अ कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर मुस्लिम्स लिविंग इन द वेस्ट, यह अंग्रेजी तर्जुमा, आयतुल्लाह सिस्तानी की एक किताब है, अल फिक्हु लिल मुख्तरिबीन, फारसी में उसका तर्जुमा हुआ है फिक बराए गर्ब नशीनान, अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर मुस्लिम्स लिविंग इन द वेस्ट, उर्दू में तर्जुमा हुआ है जदीद फिकही मसाइल, एक किताब है हर जबान में। फ्रेंच, जर्मन, ये दो तो मुझे पता है कि इसमें भी तर्जुमा हुआ। अब ये किताब क्यों लिखी गई? इसलिए लिखी गई कि जब हमारे ये बच्चे एजुकेशन हासिल करने के लिए कनाडा की यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटियों में पहुंचे, तो बहुत से ऐसे मसाले पेश आए जो ना इंडिया में थे ना पाकिस्तान में। मसाले पेश आए तो सवाल पूछा, सवाल पूछा तो जो जवाब आया वो किताब की शक्ल में छाप दिया गया, ये हमारी आंखों के सामने की बात। तो ये तो कोई मसाले नहीं, असल मसाले उस वक्त पेश आ रहे थे चौथे पांचवें और छठे इमाम के जमाने। मगर अब जो जुमला मैं कह रहा हूं बहुत एहतियात से, और वो ये है कि इस्लाम, मुसलमानों की तादाद बढ़ी, इस्लाम बड़े इलाके में पहुंचा। अब जब तादाद बढ़ी तो मुसलमानों के मसले पैदा हुए, और के बाद का जुमला, और जिन जिन इलाकों में इस्लाम पहुंचा, तो वहां पहले से तो कोई मजहब था ना, वो मजहब वाले मुसलमान होने लगे, वही तो मुसलमान हुए जो पहले से थे। अब वो जो पुराने मजहब वाले थे, मैं नाम वाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा इस्लाम को रोकना पड़ेगा, ये तो हमारे सारे बच्चों को बहका के ले जा रहा, ये तो हमारे सारे जवानों को बहका के ले जा रहा। चुनाचे वो अब आने लगे मदीने, उनके उलमा, और इस्लाम पर एतराजात लेके आने लगे। अलबत्ता कोशिश करते हैं कि किसी ऐसी जगह पे ये बात ना छेड़े जहां इमाम मासूम बैठे, इसके बाकायदा ही तारीख में पढ़ रहा हूं, ऑथेंटिक तारीख मदीने के अंदर। अब उस जमाने के एतबार से होटलों में पहुंच गए, कैबा खानों में पहुंच गए, कोई तकरीब है वहां पहुंच गए, शाम के वक्त हर महल्ले में एक बैठक होती है चौपाल, ये टीवी और ये फजूलियात तो है नहीं, चुनाचे लोग कैसे टाइम गुजारे वहां पहुंच गए, और वहां पहुंचकर आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के खिलाफ एतराज शुरू कर दी, और एतराज किए उन्होंने यूरोप से आ रहे साइंस, साइंस वाले आज भी यही साइंसी एतराजात। अगर इमाम मासूम कभी वहां पहुंच गए, वो एक एक करके खुदा हाफिज कह के उठ के चले गए, आखिर इमाम ने अपने इस करीबी सहाबी मुफज्जल को बुलाया और कहा कि देखो, खास तौर पर इस वक्त जो एक डेलीगेशन यूरोप से आया और बच्चों और नौजवानों को बहका रहा, मैं जाता हूं तो ये बात ही नहीं करते, ठहरते भी नहीं, अब ये काम तुम करो, वो तुम्हें तो नहीं जानते तुम कौन हो, एक आम आदमी, और जाकर उनसे मुनाजरा करो इस्लाम और साइंस पर, आज की साइंस नहीं, उस जमाने की साइंस, जो ये कहती थी कि जमीन चपटी है या चौकोर है, सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, ये उस जमाने की साइंस कहती थी और इससे एतराज होता था। तुम जाओ तो मौला, ये इतने बड़े बड़े पीएचडी स्कॉलर्स और इतने बड़े बड़े अपने वक्त के आइंस्टाइन या न्यूटन, मामने का बैठो चार दिन, सुबह की नमाज से लेकर ईशा तक इमाम ने इनको बिठाया और मुख्तलिफ साइंसिस की मदद से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मुख्तलिफ साइंसिस की मदद से, बायोलॉजी, जूलॉजी, ये बॉटनी, इमाम ने इनको इतना ट्रेन किया, दलीलें दी चार दिन मुसलसल। ये फिर ये गए उन महफिलों में, उन्होंने देखा एक आम आदमी आ रहा, जाहिरी शक्ल और सूरत भी ऐसी नहीं है कि उससे डरे, कहा भाई मेरे कुछ सवाल आते। और चार दिन की इस ट्रेनिंग के नतीजे में वो डेलीगेशन यूरोप वाले साइंटिस्ट का ऐसा भागा और फरार इख्तियार किया कि बद्रोहद की तारीख आंखों के सामने ताजा हो गई। ये मुफज्जल इब्ने अमर, बाकायदा इन्होंने अपने ये पूरे हालात कि इमाम ने मुझे क्या बैठ के सिखाया, एक किताब की शक्ल में लिखे, किताब बनी, किताब, नाम है उसका हदीसे मुफज्जल इब्ने अमर। और हाल ही में पाकिस्तान में चार पांच साल पहले तीन जिल्दों में, तीन अलग अलग जिल्दों में इस एक हदीस को, एक हदीस, इसे दोबारा छापा गया है। तो आजकल जो है कि इस्लाम पर साइंस के हवाले से एतराजात, तो इमाम ने जो उसकी पॉलिसी बताई, इमाम ने जो तरीका बताया, इमाम ने जो जवाब दिए, ये मुफज्जल इब्ने अमर, ये रावी की अहमियत बता रहा हूं, रावी, क्योंकि अजबक इब्ने नुबाता, अबान इब्ने तकलीब, अबू हमजाए सोमाली, बड़े बड़े साहबियों के नाम आ गए तो जिनका वाकया आ रहा था। लेकिन ये मेरे यहां मजलिस में लेकिन तो जरूर होता, तो लेकिन मेरा जो असल मुफज्जल इब्ने अमर से तारुफ है वो ये है कि जब वो हदीस मैंने पढ़ी थी आज से ठीक 43 साल पहले, 1974 में जब वो हदीस मैंने पढ़ी थी, तो किताब में हदीस तो देखी थी लेकिन रावी मुझे नहीं मालूम थे। तो लोगों ने एतराज किया, कहां से पढ़ दिया, एक वक्त में तो मेरी हर बात पे एतराज था, तकलीद कहां से पढ़ दी, ये खुमस कहां से पढ़ दिया, ये हिजाब कहां से पढ़ दिया, ये दाढ़ी कहां से पढ़ दी, हर चीज पे एतराज था एक जमाने में, तो ये कहां से पढ़ दिया। अब मैंने देखा वाकई ये किताब में हदीस तो है, कहां से आई, पता चला कि इस हदीस के रावी मुफज्जल इब्ने अमर। तो और फिर इनसे अकीदत भी बढ़ी और फिर और इनके हालात पर मैंने बहस की, कौन सी हदीस, और वो हदीस कि जब इमाम आएंगे तो सबसे पहले इमाम की जंग अपने उन शियों से होगी जो पहली आवाज सुनकर इमाम के लश्कर में शामिल होंगे, ये सबसे पहले दौड़ के आएंगे, वो 313 छोड़कर उसके बाद पहली आवाज जो इमाम की, इमाम क्या, जिब्राइल की, जाल हक वजाकल बातिल इन्नल बातिला काना जहूका, तो जो पहला लश्कर जमा होगा उसमें से दो तिहाई, 66% इमाम के दुश्मन नहीं बनेंगे, खून के प्यासे बनेंगे कि अपनी तलवार इमाम के खिलाफ निकाले, जो इतने मोहब्बत करने वाले हैं कि अपना घर बार अजीज अकारी बीवी बच्चे वतन कारोबार जॉब सब छोड़ के आ गए। तो रावी ने घबरा के पूछा, लेकिन मौला क्यों, कहा कि उनके दो एतराज होंगे, पहला एतराज वो होगा, बल्कि दोनों एतराज वो होंगे जो हम जैसे तालिब इल्मों पर भी होते हैं जब हम इमाम की बात बताते हैं। पहला एतराज ये होगा, ये कौन सी शरीयत लेके आ गया, ऐसी नई नई बातें ना हमने सुनी ना हमारे बुजुर्गों ने, ये पहला एतराज इमाम पर होगा। मैंने कहा ना कि 40 साल पहले मैं भी इसका निशाना बना था, क्योंकि गुलाम है गुलाम है गुलाम है गुलाम है इमाम हूं, तो बहरहाल वो चीजें तो आती हैं, पहला एतराज। और दूसरा एतराज ये होगा, ये भी मुझ पर होता, ये कौन सा इमाम, हम नहीं मानते, ये तो बहुत सख्त है, रहमतुल लिल आलमीन के बेटे को तो बहुत गर्म होना चाहिए, लोग दाढ़ी मुंडाए वो थपकी दे के कहे शाबाश बहुत अच्छा काम किया, औरतें बेहिजाब निकले वह कहे गुलाब जामुन खा लो तुमने तो वाकन मेरा दिल खुश कर दिया, नमाजें कजा की जाए इमाम उनके हक में दुआएं दे, मैदान करबला में बरसते तीरों में अबू समामा नमाज को याद करें, हुसैन हाथ उठा के कहें जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अबू समामा खुदा तुम्हें कयामत में नमाजियों के गुरों में शामिल करे, मोमिन कहे कि हम नमाज कजा करें तब भी हमें दुआ इमाम मिले। ये कौन सा इमाम आ गया जो कहता है वाजिबात पे अमल करना है, हराम से अपने आप को बचाना है। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। देखिए दो तरीके, पुराना लतीफा हो गया लेकिन है, पहुंची कोई खातून किसी सरकारी महकमे में मसलन नादरा में और कहा कि ये आपने कार्ड बनाया है क्या लिख दिया इसमें, फुला खातून बेवा है फुला, मैं तो बेवा नहीं हूं, ये मेरे शौहर मेरे साथ खड़े हुए हैं, गलती ठीक करे का ठीक करता हूं, एक मरतबा पिस्तौल निकाल के ठाए 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 शौहर को मार दिया, अब तो बेवा हो गई ना, गलती ठीक हो गई, ले जाओ कार्ड। गलती ठीक करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो यह है कि अगर बेवा गलती से लिख दिया तो बेवा कर दो, और एक तरीका यह है कि जो अपनी गलती है उसको करेक्ट करो। तो अब दो चीजें इमाम की तरफ से सख्तियां हुई, दो तरीके हैं, अपने आप को वैसा बना लो जैसा इमाम चाहते हैं या इमाम को इमाम मानने से इंकार कर दो, दो ही तरीके हैं ना उससे बचने के। भाई इमाम ने कहा नमाज क्यों ना पढ़ी, अब या तो नमाज पढ़ना शुरू कर दो खत्म बात, इमाम का एतराज खत्म, और या फिर कहो हम इनको इमाम ही नहीं मानते, ये कहां से नमाज लेके आ गए इस्लाम में। अक्सरियत 66% दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे, जो कि पहले तरीके में जहमत होती, पहले तरीके में कुर्बानियां देना होती। तो अब ये हदीस के इमाम के दो तिहाई मानने वाले इमाम के दुश्मन बन जाएंगे, और ऐसे कि खून के प्यासे तलवार निकाल के इमाम से जंग करेंगे, ये मुफज्जल इब्ने अमर की हदीस। तो उस वक्त सही मानों में 74 में तो मैं बहुत छोटा होना चाहिए, तो उस वक्त सही मानों में मुफज्जल का तारुफ हुआ, लेकिन ये तो खैर तकरीर का रुख जरा बदलता चला गया, लेकिन कल रात का जो आखिरी वाकया था मुफज्जल इब्ने अमर इमाम के वो सहाबी जिसे जदीद, मैं बिल्कुल मुख्तसर, जदीद जमाने के फितनों का मुकाबला करने के लिए इमाम ने ट्रेन किया था, इन लोगों से इनकी जबान में बात करना, अगर वह साइंसी एतराज लाएंगे और तुम कुरान की आयत पढ़ोगे वो कहेंगे हम तो कुरान मानते ही नहीं, तो उनकी जबान में बात करना ये मुफज्जल नायब इमाम है। और खाली ये हदीस नहीं, रजत की मौलाना मोहम्मद अली तकवी साहब के अशरे का खुलासा, रजत की अक्सर हदीसें मुफज्जल इब्ने अमर से मरवी है ये सहाबी, लेकिन असल बात ये हो रही इमाम के नायब हैं मदीने में खुम्स इमाम की तरफ से ये कलेक्ट करते हैं, वकील हैं, इजाजत नहीं है वकील हैं जो खुम्स जमा भी कर सकता है खुम्स खर्च भी कर सकता। तो जिस वक्त दो मोमिनों ने कहा कि है मुफज्जल तुम इतने मालदार कब से हो गए कि आम से मोमिनों के झगड़े में जिनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक भी नहीं हजारों तुमने दे दिए, मेरी रकम नहीं ये इमाम की रकम है, ये कह के मेरे पास रखवाई गई कि जब कभी हमारे दो मोमिन दौलत दुनिया पे झगड़ा करें हमारा माल दे के उनका झगड़ा खत्म करो, हमें अच्छा नहीं लगता कि खैरों के सामने दुश्मनों के सामने हमारे चाहने वाले आपस में लड़े। और यहां से मैंने कल बात फैलाई थी कि अब हमारे वो इख्तिलाफात, देखिए जुमला कभी लोग कह देते हैं सारी बातों पे नहीं कुछ बातों, मौलाना ये झगड़े जो हैं ये आज के कोई थोड़ी हैं, 100 साल पहले भी ये इख्तिलाफ था। मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, जनाब कासिम की मेहंदी का मसला, भाई ये नया मसला को छोड़ी 100 साल पहले भी हिंदुस्तान में न सिर्फ ये कि पूरी शिद्दत के साथ था बल्कि एक लफ्ज इस्तेमाल होता था उलमाए लखनऊ वर्सेस उलमाए हैदराबाद, इंडिया का हैदराबाद। मैंने कहा ना मैं कोई तबसरा नहीं कर रहा राय नहीं दे रहा, बोला ना ये मसले 100 साल पहले भी थे, पिछले साल ये मसला उठा था, तो कहा नई बात नहीं है, नहीं नई बात यह कि 100 साल पहले जो आपके इख्तलाफात थे वो आपके बीच में रहते थे, आज इंटरनेट की वजह से, आज मीडिया की वजह से, आज व्हाट्सएप की वजह से, आज ये यूट्यूब की वजह से आपके दरमियान कम रहते हैं, आप कम सुनते हैं उन चीजों को, दुश्मन ज्यादा सुन के बगले बजाता है, वो ज्यादा खुश होता है। तो फर्क है ना, घर की बात घर में रहे, घर की बात आप बाजार में उछालें, अगर कोई पुराना इख्तलाफ है तो, वरना तो जो लैंग्वेज आजकल हमारे मोमिनीन इस्तेमाल करते हैं ये शिया तारीख में कभी किसी मोमिन ने इस्तेमाल नहीं की, जो आजकल इस्तेमाल हो रही, और आम मोमिन के खिलाफ नहीं, मुज्तहिदीन के खिलाफ, मराजे के खिलाफ, सही बात बताने वाले उलमा और खतीबों के खिलाफ। वो तो हम देख लेते हैं ना, जो कमेंट्स आते हैं नीचे क्या लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। तो ये मत कहिए कि इनमें से कुछ इख्तलाफ पुराने, पुराने इख्तलाफात का तरीका कुछ और था, आज ये तरीका और है। अब यहां रुक के एक बात करूं, ये मौजू आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। इमाम अपने दो शियों का इख्तलाफ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। इसमें एक और ऐसी चीज कह दी जो मैंने बहुत कम पढ़ी इस मेंबर पे, लेकिन मुझे मालूम कि आपने सैकड़ों नहीं हजारों मरतबा सुनी, तो बहुत मशहूर बात, और वो ये कि जो रिवायत अभी मजलिस के शुरू में आई उसी का अगला हिस्सा, उसी रिवायत का अगला हिस्सा, 21 रमजान मगरबैन की नमाज हो गई, अली बहुत कमजोर हो चुके, हसन को बुला के कहा कि बेटा हसन अब लोगों से मुलाकात का मौका नहीं है, सिर्फ ये 5 या 7 आदमियों को लेके आओ। आ गए वो लोग, बातें हो गई, उनको भेज दिए। अब बाहर वालों से, असहाब से बात हो गई, अब घर वालों को जमा किया। ये घर वालों से आखिरी मुलाकात है अली, और उस वक्त जो वसीयत की हसन और हुसैन कब, सर पे जरबत लग चुकी, और ऐसी जरबत कि इब्ने मुलजिम खुशी से उछल उछल के कह रहा कि मैंने ऐसा जहर तलवार पे लगाया था कि एक कतरा दरिया में डालो तो पूरे दरिया की मछलियां मर जाएंगी, ऐसा जहर। ये अली का जिगर था कि 3 दिन बर्दाश्त किया उस जहर को। तमाम आइम्मा ताहिरीन के पाप हैं अली, अस्सलाम अलैका या वालिद अल आइम्मत अल अथार, आज भी हम अली को सलाम करते हैं। तो आइम्मा के अलग मसाइब अली में जमा हुए, हर इमाम को या जहर से शहीद किया गया या तलवार से, अली के लिए जहर भी इस्तेमाल हुआ, अली के लिए तलवार भी इस्तेमाल हुई, और आखिरी दिन है, कमजोरी हद से ज्यादा, सलूनी कहने वाला यह कह रहा कि आज मुख्तसर सवाल करना, आज मेरे बदन में ताकत नहीं। फातह खैबर है ये, वो अली इस वक्त भी ऐसी हालत में भी हसन हुसैन को बुला के पहला जुमला क्या कहता है, पहला जुमला नहजुल बलागा में है, कोई हवाला देने की भी, यानी हवाले को साबित करने की जरूरत नहीं, हर साल आप रमजान में सुनते हैं, पहला जुमला, बेटा हसन हुसैन उसी कुमा बे तक्वल्ला वसीयत करता हूं, ये वसीयत आखिरी घंटा है अली का, अल्लाह से डरना, फिर वह इस्लाह जातिल बैन, दो मोमिनों के दरमियान कभी झगड़ा ना होने देना, इस्लाह कराना, इस्लाह, फइन कसमे तो जद्दा कुमा, मैंने खुद अपने कानों से तुम्हारे नाना को ये कहते सुना, इस्लाह जातिल बैन अफजल मिन इबादत सना, दो मोमिनों का झगड़ा खत्म कराना 1 साल की सुन्नत इबादत से बेहतर, पूरा साल आप मुसल्ले पे खड़े रहें, पूरा साल आप रोजे रखें। अच्छा, इसी आगे चलकर नमाज की बात है, रोजे की बात है, कुरान की बात है, आज की बात है, मशहूर बात है, अली ने उन सबसे पहले मोमिनों के इख्तलाफ खत्म कराने की बात की, नमाज से भी पहले, 4 दिन से मैं क्या, एक मोमिन के अल्फाज में, 4 दिन से मैं क्या भाषण दे रहा था, नमाज, अहमियत नमाज, फजीलत नमाज, अली के आखिरी वसीयत नामे में नमाज से पहले मोमिनों के इख्तलाफ का तस्किरा। यह नहीं कहा कि आए मेरे शियों इख्तलाफ ना करना, वो जिंदगी भर कहते रहे, हमसे और आपसे कहा जहां हो जाए इख्तलाफ वहां पे दूर कराना, वहां उसे खत्म करना, वहां मुसालिहत की कोशिश करना। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मौलाना का मौजू ये नहीं, ये नहीं, जैसे कल मैंने कहा नाके को कोड़ा न मारने से मैं आपको कहां ले गया, मर्जियत की जानेब, उसी तरह यह जुमला इत्तेहाद यूनिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यानी करना चाहिए, करता आ रहा हूं। आज का मौजू कुछ और है। अब ये आपने सब कुछ अच्छा, ये इनमें से एक सवाल मेरा है, आखिरी बात, कौन सी नई बात मैंने कही? हर मोमिन जानता अहमाए ताहरीन अपने शियों का जरा सा इख्तलाफ भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, हर मुमकिन तरीके से उसे दूर करते हैं। और मैं मिसाल मुकम्मल क्यों ना कर दूं, मिसाल नहीं मसाला शरी, अपना पैसा खर्च करते हैं, दौलत दुनिया पे झगड़ा करने वाला मोमिन पैसा खर्च करते हैं। ये दूसरी जाने एक हराम की इजाजत देते हैं अगर इख्तलाफ खत्म हो रहा, ये दो बहुत बड़े बड़े जुमले हैं। शराब इस्लाम में हराम है, कब जायज होती है या इजाजत मिलती है? खंजीर का गोश इस्लाम में हराम है, किस एक्सट्रीम केस में जाके इजाजत मिलती है? मिसालें देने को आ जाऊं तो दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन फिक्र और हलाल और हराम एक तरह से मेरी दिलचस्पी का मौजू, बहुत बेहतर चला जाऊं। आपने सुना है ना, बदतरीन गुना झूठ है, तीन जगहों पे झूठ की इजाजत, उनमें पहली जगह है जब दो मोमिनों के इख्तलाफ को खत्म कराना, झूठ बोलो, झूठ बोलो, इख्तलाफ खत्म हो, क्योंकि ये मेरा असल मौजू नहीं है। वरना बड़ी दिलचस्प दिलचस्प मिसालें, घड़ी सही सवा ना होगा, अच्छा तो बड़ी दिलचस्प दिलचस्प मिसालें देता, छोड़े मिसालों को, सिर्फ इतनी सी बात, एक तरफ नेकियों में अहम तरीन नेकी राह खुदा में खर्च करना, वो भी मुसालेहत के लिए यह अहम तरीन नेकी लाई गई, गुनाहों में बदतरीन गुनाह झूठ बोलना, वो इजाजत दिया गया अगर मोमिनों का इख्तलाफ खत्म। तो यह मुख्तलिफ अंदाज, मौला के सर पे जरबत लगी आखिरी वसीयत, वो इमाम का वाकया, ये शरीयत का वो मसला जो अहादीस से मोतबरा से शिया और सुन्नी दोनों के यहां साबित है, मगर अब मगर के बाद इंतजार करिएगा, एक अहम बात आ रही है, बस शुरू होगी खाली आज, क्योंकि मेरा इरादा तो था इसी पे बात करने का। दो बच्चे, ये दो बच्चे ये बाहर जाके लड़ने लगे, बहुत शरीफ बच्चे हैं, देखिए कितने अदब और एहतराम से बैठे, लेकिन अगर लड़ने लगे तो आपको इतनी हैरत नहीं होगी। आप में से दो मोमिन बाहर जाके लड़ने लगे, जरा बुरा लगेगा, और आप कहेंगे क्या बच्चों की तरह लड़ रहे, अमामा अबा कबा पहने दो आलिम बाहर के सहन में जाके लड़ने लगे, अब आपको तो यकीन भी नहीं आएगा, शर्म के मारे या तो आप मुंह फेर लेंगे, ये कहेंगे इनको क्या हो गया भाई, लड़ाई वही लड़ाई, लेकिन जैसे जैसे आदमी का स्टेटस हाई होता वही चीज उस पर और ज्यादा बुरी लगती, जो बच्चे के लिए, बच्चे लड़ेंगे तो लोग भी कहेंगे भाई आगे बढ़ जाओ, बच्चों का काम ही लड़ना, यही कहेंगे लोग। और दो बड़े काबिल एहतराम नूरानी चेहरे वाले लिबास उलमा में यहां लड़ने लगे, पहले तो आपको यकीन नहीं आएगा जो हम देख रहे हैं, सही देख रहे हैं कि गलत देख रहे हैं, और फिर सबसे ज्यादा बुरा लगेगा, फितरत, मौला आम मोमिन के झगड़े को बर्दाश्त नहीं कर रहे। इतनी देर से मैं क्या कह रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कहने की। अब आइए, दो मुश्तहदीन में इख्तलाफ हुआ, बात बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, वाकया मशहूर है लेकिन ये बच्चों ने शायद न सुना, बगदाद शहर और महल्ला करख आज भी है, साहिबान ईमान की पूरी बस्ती, सैयद मुर्तजा की मर्जियत, मर्जियत उस वक्त उन सैयद मुर्तजा के पास है जिनके छोटे भाई आम आदमियों में ज्यादा मशहूर है, और उलमा साहिबान इल्म और पढ़े लिखे मोमिनीन में बड़े भाई ज्यादा मशहूर है, जिनका वाकया, जिनका वाकया, छोटे भाई सैयद रजी नेजुल बलागा जैसा ऐसा अजीम कारनामा अंजाम दे गए कि रहती दुनिया कयाम कयामत तक सैयद रजी का नाम जिंदा हो गया। नेजुल बलागा जिन्होंने जमा की, उनके बड़े भाई सैयद मुर्तजा, अब्बासी खलीफा ने देखा, वजीर ने, कि जो तुम बीमार हो बार बार, मोमिन नहीं है, मौला को पुकार रहा, कहा कि अपनी शफा चाहिए, मेरे बेटे के पास जाओ। बेटा कौन? ग्यारहवें इमाम की शहादत है बारहवां गाइबत में, का अलमुल हुदा, جو ہدایت کا پرچم ہے وہ کون؟ کہا سید مرتضیٰ. مولا نے اپنا بیٹا بھی کہا، علم الہدا بھی کہا، اب مرجع بن گئے. بن گئے کا مطلب زبردستی نہیں، ان کے استاد شیخ مفید کا انتقال ہوا اور شیخ مفید کے انتقال کے بعد ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، اور اب ان کے پاس پڑھنے کے لیے دور و دراز سے لوگ آتے ہیں. آنے والوں ان کا سب سے چہیتا شاگرد، سب سے ذہین شاگرد، جو علم میں سب سے پیچھے تھا، یہاں پڑھنے آیا چھرانگے لگاتا ہوا سب سے آگے پہنچ گئے. مولا نے ان کی کتاب شیعہ علماء کو دکھا کے کہا کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے تمہیں حلال و حرام کے بارے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت. مولا نے، اگرچہ لوگوں نے اس کا غلط نتیجہ نکالا اور کہا، مولا کہہ گئے یہ کتاب کافی ہے، 80 سال تک کسی مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا، یعنی تقلید بند رہی 80 سال، مولا نے کہا یہ کتاب. پھر واضح ہوا کہ یہ مراد کوئی تھوڑی تھی کہ اجتہاد نہ کرو، یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے. وہ شیخ طوسی جن کا یہی کارنامہ کیا کم ہے کہ نجف میں اپنا حوزہ، وہ حوزہ علمیہ قائم کیا جو آج تک ہے. یہ اکثر گھڑی 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 اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اعلانات سنتے ہیں کہ جی مسجد بن رہی ہے، امام باڑہ بن رہا ہے، چندہ دیجئے، صدقہ جاریہ ہوگا. آپ دیتے بھی ہیں. جس نے نجف کے اس حوزے کو قائم کیا جہاں شیخ طوسی سے لے کر مرحوم آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی تک اجتہاد کا پورا سلسلہ جاری ہے، اس کے صدقہ جاریہ کا کیا کہنا. یہ الگ بات ہے کہ جب کبھی میں شیخ طوسی کے قبر کے قریب سے گزرا تو میں تو ضرور گیا. میں دعویٰ نہیں کرتا، کوئی مجھے ہندوستانی پاکستانی قافلہ وہاں نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں. اور گزرنا بھی ضروری، وادی السلام کا راستہ وہیں سے گزرتا. خیر، تو یہ ذرا سا میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، بڑھاپا ہے بہک جاتا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ شیخ طوسی وہ بھی اتنے بڑے عالم کہ سید مرتضیٰ کے مرتے ہی ان کی تقلید ہوئی، اور ایسی تقلید کے 80 سال ہوتی رہی، لیکن ابھی وہ مجتہد ہیں، تقلید نہیں. واقعہ بہت مشہور ہے، بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. سید مرتضیٰ، شیخ طوسی، سارے شیعہ ایک ہی جگہ رہتے تھے، ایک ہی محلے میں. سید مرتضیٰ کو کہیں کام سے جانا تھا، وہ گھر سے باہر نکلے، سامنے گھوڑا ہے، درخت کے نیچے گھاس چر رہا ہے. چنانچہ اپنے غلام سے کہا کہ مجھے جانا، اس کو تیار کرو. اس نے قریب جو زین ضروری ہوتی ہے گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے، وہ اٹھائی اور گھوڑے پہ کسنا شروع کی. انگریزی میں غالباً اس کو سیڈل کہتے ہیں، زین. بچے آج کل زین کہاں سمجھیں گے، سیڈل سمجھ میں آ جائے گا. وہ زین لگائی. اب سید مرتضیٰ بیٹھنا چاہ رہے ہیں، سامنے کھڑے ہیں شیخ طوسی. کہا کہ اے استاد محترم، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ واقعی کو اس طرح سمجھے کہ مرحوم آقا خوئی بیٹھنا چاہتے سواری پر اور سامنے کھڑے ہیں آقا سیستانی. بالکل یہی سٹیٹس تھا ان دونوں کا. سید مرتضیٰ استاد، شیخ طوسی شاگرد. سید مرتضیٰ اس وقت کے مرجے، ان کے فوراً بعد کے مرجے شیخ طوسی. روک لیا آقا سیستانی نے، روک لیا مثلا آقا خوئی. شیخ نے کہا کہ یا سید، ابھی ابھی ایک کتا یہاں سے گزرا میری آنکھوں کے سامنے، اس پر پیشاب کر کے آگے بڑھ گیا، نجیس ہے. غلام رکا. سید نے کہا رکے کیوں؟ اسی زین کو گھوڑے پہ باندھو، میں اس پہ بیٹھ کے جاؤں گا. شیخ نے کہا کہ نجیس ہے. کہا لیکن میرا فتویٰ یہ کہ دو عادل گواہ گواہی دیں تو چیز نجیس ہوتی ہے. تم ایک ہو، عادل ہو، سب کچھ ہو، ایک ہو، دو کا عدد ضروری ہے. چنانچہ یہ چیز میرے نزدیک پاک. یہ کہہ کے اس پر بیٹھے. پیغمبر کی ایک حدیث بہت جلدی پڑھ رہا ہوں، گھڑی کی سوئیاں جو لوگ آج آ گئے، اگر کالی بلی تمہارا راستہ کاٹ جائے تو جان بوجھ کے وہی کام کرنا. یہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے لیکن الگ. سید نے کہا اب تو میں اسی میں بیٹھ کے جاؤں گا، یہ پاک ہے میرے نزدیک. شیخ طوسی نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا، میں یا تو آپ کہہ دیجئے کہ بھائی تم پہ اتنا بھروسہ نہیں، شاید تمہیں دھوکہ ہو گیا ہو، شاید تم نے غور سے نہیں دیکھا ہو، شاید وہ کتا نہ ہو، کتے جیسا کوئی، ایسی کوئی بات کر دو ٹھیک بھی. کہہ رہے کہ نہیں قابل بھروسہ ہو، जो कह रहे सही कह रहे, दो नहीं हो एक। अब ये झगड़ा इतना बड़ा कि मामला गया मौला तक, मौला की शहादत है 41 हिजरा, वाकया है 441 हिजरा का, चले 436 में सैयद मुर्तजा का इंतकाल हुआ, 431 हिजरा का, यानी 400 साल बाद का। मौला कहां? लेकिन नहीं, मौला तो हर जगह है और हर दौर में है, तो ये पाया कि ये मसाला लिखकर मौला की जरी में डाला जाएगा। आपको मालूम है कि अभी चंद साल पहले तक तरीका था कि मौला का हरम या जरी रात को बंद होती है, सुबह के करीब खुलती। ये तो अब 24 घंटे का निजाम आया, पर्चा लिख के डाला गया जरी में, बंद हो गया हरम। फजर के करीब जब खोला गया, वही पर्चा जरी के बाहर पड़ा। इस तरह से रोजा नहीं बंद किया जाता है, एक एक कोना झांका जाता है, कोई यहां है तो नहीं, तो कोई नहीं था, पर्चा बाहर पड़ा और पर्चा उठाया तो एक जुमला लिखा हुआ है मौला की तहरीर में, मौला की तहरीर के कुरान आज भी आपको कुम, मशद, नजफ कई जगह मिलेंगे। मौला की तहरीर क्या है? तहरीर का जब हम अपने जो आम मोमिनों को लड़ता नहीं देख सकते, अपने माल में से उनको दे के उनका झगड़ा खत्म कराते, तुम्हें शर्म नहीं आती लड़ते? तुम तो मर्जी हो, तुम तो आलिम हो, तुम तो इतने बड़े हो, आम मोमिनों का झगड़ा मिल्लत की तौहीन है तो नायब इमाम का झगड़ा, शर्म करो तुम लोग, इतनी छोटी सी बात पर, बात भी इतनी छोटी। ये होना चाहिए था, जुमला बड़ा अजीब था, अल हक ओ मा वलदी व शेख ओ मोतमदी, इस मसले में हक मेरे बेटे के साथ, सैयद मुर्तजा के साथ है, सही कह रहा, उसका फतवा है, दो तो दो होने चाहिए, मगर व शेख, शेख तूसी मोतमदी, मुझे इस पे पूरा ट्रस्ट और भरोसा, मोतमदी ट्रस्टवर्दी, मुझे पूरा पूरा भरोसा। अब बताइए, इनका झगड़ा खत्म होगा कि और बढ़ेगा? अगले दिन फिर झगड़ा करो, मौला इतने बड़े बड़े लकब दे रहे हैं, सैयद को कह दे वलदी हक, शेख को कह दे, उम्मती को कह दे मोतमदी, वो इमाम जो सर पे जरबत लगे तो कहे साहिबान ईमान, झगड़े ना करना, इख्तलाफ ना करना, अपने इख्तलाफ दूर कराओ, वो इमाम जो माल खुम्स में से एक हिस्सा रख दे, झगड़े ना होने पाए। और इतने बड़े कौम तशय्यो के लीडर्स, रहबर, टावरिंग पर्सनालिटी, उनसे कहे तुम बच्चों जैसे मसले पे लड़ रहे, क्या मसला था अगर जीन बदल दी जाती? नहीं, ऐसा जुमला कहा, ये दोनों और ज्यादा पुख्ता हो गए इसमें और ये बता गए कि फतावा के इख्तलाफ की वजह से मर्जियत की शान में कोई कमी नहीं आती, शान और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मुज्तहिदीन में इल्मी इख्तलाफ हो, तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं, मौला मौजूद है जो कह रहा हक भी यहां पर है, मेरा भरोसा भी इन्हीं पर है। बात मुझे इसके और जरा आगे बढ़ाना थी लेकिन अब वक्त बहुत हो गए। मोतमदी मेरा भरोसा, यह वो रुतबा है जहां पे हमें, बहुत जल्दी क्योंकि वर्किंग डे है ना, इसलिए लंबी बात नहीं और जरूरत भी नहीं, बहुत अजीब लफ्ज आ गया ना इसमें, एतमाद है मुझे, पूरा भरोसा। हमारे यहां तो बात शुरू यहां से होती है, मर्जियत के खिलाफ या तकलीद के खिलाफ, हम इनकी तकलीद करें? ये खुद तो एक बात पे जमा नहीं होते और हमसे कहते हैं कि आओ हम तुम्हें दीन सिखाएं, और वहां मौला ताईद भी कर रहा है ये कौन है पहला इमाम। और आखिरी इमाम का वाकया याद कीजिए, वो नहीं पढ़ूंगा, वक्त नहीं। कहा कहे हमारे शियों, तुम्हें इनके मामले में बोलने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे नायब नहीं है, ये मेरे नायब, अगर ये कोई गलती करेंगे या तो मानो कि मैं मर चुका हूं, और अगर मैं हूं तो मेरे नायब गलती ये करेंगे, इस्लाम है करूंगा। ये आखिरी इमाम कह के जा रहा है गैबत में। और हमारे यहां हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा, हर जवान जिसके हाथ में स्मार्टफोन आ गया, जरा जरा सी बात पे मराजे की तौहीन करना और इन मसाइल में उन पर एतराज करना, इख्तलाफ क्यों है? अली ताईद कर रहे, जमाने का इमाम करेक्शन कर रहा आके, और हम जो है वो अपनी जगह पे बेचैन हुए जा रहे हैं कि ये हो क्या रहा। भरोसा बहुत बड़ा लफ्ज है, अली ने कहा मुझे शेख पर पूरा भरोसा है, گرچہ ان کے مسئلے کو غلط بیان کیا، غلط بھی نہیں تھا، شیخ کے فتوے سے صحیح تھا، مگر اپنا فتوہ دوسرے مرجع پہ نہیں چھو سکتے ہو، اور ہمارے مراجع کرتے بھی نہیں ہیں یہ. لیکن جلدی میں شاید ایک آٹھ لفظ میں غلط بول گیا، بات کو ختم کرو، بھروسہ. اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں پورے شان کے ساتھ، بھروسہ پوری شان کے ساتھ اگر نظر آئی کسی میں تو اس کا نام ہے عباس. کیا بھروسہ ہے عباس؟ بچے نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا وہ جو دوسرے دن آپ نے شمر کا واقعہ پڑھا تو آخر میں حضرت عباس نے کیا جواب دیا؟ وہ تو بھانجا بھانجا کہہ کے جو کر رہا تھا. عباس آقا کے کہنے پہ باہر تو گئے. کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کے لیے امان لایا ہوں. کہا میرے مولا حسین کو امان نہیں ملے گی، وہ تو جانور کے بل میں بھی جائیں گے تو ہم وہاں پہنچ کے بھی مارے گی. عباس نے کہا توف ہے تیرے اوپر، لعنت ہے تیرے اوپر، میرے آقا کو شہید کرنا چاہتا اور میرے لیے امان لاتا. یہ کہہ کے واپس کیا ہی بچے کا سوال تھا. لیکن اعتماد، بھروسہ کائنات کی تاریخ میں جیسا ہمیں حضرت عباس کے حوالے سے نظر آئے، بچوں کا بھروسہ عباس. اہل بیت اطہار کے گھر کی محترم خواتین کا بھروسہ عباس. آقا حسین کا بھروسہ عباس. آقا سجاد، عباس کی قبر میں اتر کے سینے پہ سر رکھ کے کہتے ہیں اے میرے چچا آج آپ نہ رہے تو چل کے دیکھیے آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے. سجاد عباس کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں. یہ مصائب میں اکثر پڑھتا ہوں، آج یہ نہیں پڑھے میں نے صرف ایک جملہ. تو کسی نے کہا کہ آقا عباس کا سر تو پورے سفر میں ساتھ تھا لیکن دیکھ کچھ نہیں رہا تھا، کیونکہ یہ واحد سر تھا جو نو کے نیزہ پر رکا ہی نہیں. جتنی بار عباس کے سر کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا اتنی بار وہ زمین پہ آ کے گرا. آخر میں خولی کے گھوڑے کی گردن میں یہ سر باندھا گیا، وہ سارے راستے زمین سے ٹکراتا تو گیا، نو کے نیزہ سے یہ منظر دیکھنے کو تیار نہیں. مگر آج کے مسائل جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ماں کا بھروسہ. ام البنین کا رتبہ بہت بلند ہے. بہت تلاش کے بعد مولا علی نے ان سے شادی کی، اور آپ کو پتا کہ کوئی پریشانی اور مصیبت ہو تو ام البنین کا وسیلہ بھی ان وسیلوں میں سے ایک ہے، کہ فاطمہ زہرا کے بعد جس کا وسیلہ حاجت پوری کراتا ام البنین، اس کا بھروسہ دیکھ لیجیے. کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا، اور ایک دن ایک دشمن اہل بیت جنت البقیع کے قریب سے گزر رہا، اس نے دیکھا کہ سامنے ہی تو محلہ بنی ہاشم ہے نا. ایک گھر کا دروازہ کھولا، ایک بہت ہی ضعیف بی بی کالے کپڑے پہنے عصا ہاتھ میں تھام کر آہستہ آہستہ محلہ بنی ہاشم سے بقیع کے قبرستان میں داخل ہوئی، اور سیدھا اس قبر پہ گئی جو شہزادی کے نام سے منسوب، جا کے اپنے آپ کو شہزادی کی قبر پہ گرایا اور کہا کہ اے بنت رسول، میں آپ کو آپ کے بیٹے اور لال عباس کا پرسہ دینے آئی. خاندان بنو امیہ کا یہ شخص اطراف میں گزرنے والوں سے کہتا ہے یہ کون بی بی؟ ہمارا اس گھرانے محلہ، ہمارا خاندان بنی ہاشم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ عباس فاطمہ کا بیٹا نہیں ہے، ام البنین کا بیٹا، اور یہ تو اسی محلے سے نکل کے آئی، انہیں یہ رشتہ داری نہیں پتا. سننے والے نے کہا کہ ارے یہ خود ام البنین ہے جو اپنے لال کا پرسہ اس لیے فاطمہ کو دے رہی، کہ فاطمہ نے ہمیشہ کہا تھا अब्बास मेरा बेटा है, अब्बास हसन और हुसैन के बाद मेरी तीसरी औलाद है, अब्बास मेरा छोटा हुसैन है, हमेशा फातिमा ने यह कहा। लेकिन मजलिस का उनवान था भरोसा एतमाद। उम्मुल बनीन ने चेहरा उठाया और एक बार करबला का रुख किया और दो जुमले कहे। पहला जुमला समझ में आता है, दूसरा समझ में नहीं आ रहा अगर खुद उम्मुल बनीन न समझाए। पहला जुमला यह कहा कि अब्बास करबला करो, लोग मेरे पास आते हैं और तेरा पुरसा देते हैं, मैं सबकी बातें सुनती हूं, यकीन किसी पे नहीं करती, मुझे यकीन ही नहीं आता कि मेरा अब्बास मारा गया। मैंने तुझे दूध पिलाया है, मैंने तुझे पाला है, मुझे पता है कि मेरा अब्बास कितना बहादुर है, मुझे पता है कि इस दुनिया में तो अब्बास को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इन लोगों को धोखा हुआ है जो पुरसा दे रहे हैं। बात समझ में आती है, इस कायनात में कोई जो अब्बास को मार सके? लेकिन उम्मुल बनीन कहती अब्बास फिर मैं यकीन कर लेती हूं मेरा अब्बास मारा गया, फिर मुझे यकीन आ जाता है मेरा अब्बास मारा गया। शहजादी उम्मुल बनीन ये यकीन कैसे आता है? कहा जब मैं सुनती हूं नन्नी सकीना के रुखसार पे तमाचे लगे, मेरा अब्बास जिंदा होता तो सकीना के तमाचे तो कोई नहीं लगा सकता, जब मैं सुनती हूं मेरे इमाम वक्त मेरे इमाम जमाना सज्जाद की कमर पे कोड़े बरसाए गए, मेरा अब्बास जिंदा होता तो हिम्मत थी किसी में कि इमाम जमाना के कोड़े मारता? और आखिरी जुमला आज का, जब मैं सुनती हूं मेरी शहजादी जैनब की चादर छीन ली गई, अरे मेरा अब्बास जिंदा होता तो मजाल थी किसी में कि चादर जैनब पे हाथ डालता। वाह अब्बास वाह अब्बास, खुदा बंदा बाबुल हवाइज बाबुल मुराद अबिल फजल अब्बास और उनकी हाजत रवा मां उम्मुल बनीन का वास्ता, जो लोग आज के मजलिस में हैं इनकी तमाम हाजतें और मुरादें पूरी फरमा, जो आज के मजलिस में इन मसाइब पे गिरिया कर रहे हैं उनको, इनके घरों को, घर वालों को, औलादों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता इन्हीं मसाइब अहले बैत के जिन्होंने ये जुल्म किए हैं, आज अहले बैत के मानने वालों पे जुल्म करने वाले हैं उन सबको नीस्त नाबूद फरमा और मजालिम के खातिमे के लिए जहूर इमाम जमाना में ताजील फरमा। मातम हुसैन।